अब आप भाषा विविध रूप नामक चैप्टर का मंचन विवेकानंद की आवाज में सुनेंगे। बोली, जब कभी हम संबंधित असंबंधित किसी भी भाषाई समस्या पर विचार करते हैं तो साधारणतः भाषा के पर्याय के रूप में बोली शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ बोली शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। बोली में सामान्यतः साहित्यिक या सामाजिक प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता, यद्यपि यह संभव है कि इसमें लोक साहित्य की रचना होती हो और काफ़ी बड़े भूभाग में बोली तथा समझी जाने के कारण इसका सामाजिक महत्व हो। कनौजी बुंदेली इसके उदाहरण है, जो विस्तृत भूभाग में बोली जानी जाने पर भी साहित्यिक रचनाओं के अभाव के कारण सामाजिक मान्यता पर भी प्रतिष्ठा न पा सकी।
बोली जहाँ एक ओर भाषा की सीमा को स्पर्श करती है, वही दूसरी ओर व्यक्ति बोली तक जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली भिन्न होती है। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। व्यक्ति की भाषा हर क्षण परिवर्तित होती रहती है, पर यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे किसी खास बिंदु पर अलगया नहीं जा सकता। यह पहले ही कहा जा चुका है कि कई व्यक्ति बोली मिलकर एक बोली का निर्माण करती है, किंतु इनके मिलन का आधार उनमें आपस की बोधगम्यता होती है। दो व्यक्तियों की व्यक्ति बोली तभी बोली के अंतर्गत आ सकती है जब उनमें बोधगम्यता हो, भले ही भौगोलिक दूरी हो। कभी कभी भौगोलिक दूरी न रहने पर भी दो व्यक्तियों की बोली में बोधगम्यता न के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में उन दो व्यक्ति बोलियों को एक समूह में नहीं रखा जा सकता। यह स्थिति प्रायः पहाड़ी एवं समतल मैदानी इलाकों के व्यक्तियों में पाई जाती है। यह मैदानी इलाकों से सटे जंगली इलाकों में रह रहे व्यक्तियों में भी होती है। बोध गम्यता का आधार भाषाई संरचनात्मक तत्व होते हैं जो एक दूसरे को निकट लाने का कार्य करते हैं। बोली एवं भाषा के अंतर पर विचार करते हुए डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी यह स्वीकार किया है कि दोनों में कोई निश्चित विभाजक रेखा खींच पाना संभव नहीं। इनके अनुसार भाषा और बोली में वही संबंध है जो पहाड़ था पहाड़ी में। यह निश्चित कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पहाड़ है और हॉलवर्न पहाड़ी, किंतु इन दोनों के मध्य विभाजक रेखा तो बता पाना कठिन है। बोली और भाषा के प्रकृति तत्व की दृष्टि में से अंतर कर पाना कठिन है, क्योंकि एक बोली समय के अंतराल से भाषा बन जाती है और कभी भी भाषा कालांतर में बोली ही रह जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी की वर्तमान बोलियां अवधि, वज्र, खड़ी बोली को लिया जा सकता है। अवधि और ब्रज बोली स्तर से ऊपर उठकर भाषा एवं पुनः भाषा के स्तर से पदच्युत होकर बोली बनकर रह गई है, किंतु इन तीनों में आज भी बोधगम्यता है और तीनों ने मिलकर वर्तमान हिंदी भाषा की निर्मित की है, इसलिए ये हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। इस प्रकार बोली एक तरफ व्यक्ति बोली की सीमा को छूती एवं उससे संचालित होती है तो दूसरी तरफ भाषा की सीमा को छूती एवं उसे निर्मित के लिए प्रकृति तत्व प्रदान करती है। इस प्रकार बोली एवं भाषा में अंतर कर पाना और उसे परिभाषित कर पाना कठिन है। फिर भी काम चलाने के लिए बोली की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है।
किसी भाषा के ऐसे सीमित एवं क्षेत्र विशेष के रूप को बोली कहा जाता है, जो एक तरफ ध्वनि रूप वाक्य अर्थ शब्द तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से अपने क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट वैभिन्न से स्पृक्त नहीं होती। दूसरी तरफ इस धरातल पर वह उस भाषा के परिनिष्ठित रूप से भिन्न तो है हो, पर इतना भिन्न हो कि अन्य रूपों के वक्ता उसे समझ न सके। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। सामान्यतः कोई बोली तभी तक बोली कही जाती है जब तक उसे साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्व न प्राप्त हो, या जब तक पड़ोसी बोलियों से उसे भिन्न करने वाली उसकी विशेषता इतनी न विकसित हो जाए कि पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समझ न सके। इन दोनों में से किसी भी एक या दोनों स्थितियों को प्राप्त करने वाली बोली भाषा बन जाती है। भाषा तथा बोली, यह पहले ही कहा जा चुका है कि भाषाओं को भौगोलिक सीमाओं में बात कर बोलियों की संज्ञा दी जाती है, जिसमें उसके ऐतिहासिक, साहित्यिक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक ये इकाई के दर्शन होते हैं। प्रत्येक बोली क्षेत्र में संरचनात्मक दृष्टि काफी असमानता के तत्व मिलते हैं जिनको फ्रांसेस्काटो संरचनात्मक लेंस कहते हैं। किसी एक बोली अथवा भिन्न भिन्न बोलियों को सीमांकित करने के लिए परंपरा से अनेक प्रकार की भाषिक विशेषताएं देखी जाती हैं, जिसमें ध्वनिगत विशेषताओं के अतिरिक्त शब्दगत तथा भूमिगत, शब्दगत तथा रूपगत एवं वाक्यगत विशेषताएं भी ली जाती हैं। यदि कोई भाषा एक बड़े भूभाग में लाखों करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है तो भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से उसके अनेक भेद उभेद किए जा सकते हैं। एक ही स्थल के लोग परस्पर मिलते रहते हैं, इसलिए उनकी बोली में समानता होती है। यही नहीं, एक ही व्यवसाय से संबंध लोगों की बोली भी भिन्न भिन्न भाषाओं से संबद्ध होते हुए भी समानता के निकट केवल इसलिए आ जाती है कि उनमें भी परस्पर मिलन होता है रहता है। अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में शिक्षित समुदाय की बोली में भी अधिक समानता होती है। बोलियों में पारस्परिक संबंध। दो या दो से अधिक बोलियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए अनेक तात्विक आधार संभावित हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। पहला, बोधगम्यता। कतिपय भाषा वैज्ञानिक इस तत्व की सत्ता को पूर्णतः अनिवार्य नहीं मानते। उनके अनुसार बोधगम्यता का संबंध व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता से है, किंतु इस तत्व की महत्ता एवं अनिवार्यता को इतनी सहजता से अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा ही एक भाषा की दो बोलियों के सापेक्षित संबंध, एक बोली का दूसरी भाषा से संबंध तथा बोली का अपनी संबद्ध भाषा से संबंध स्थापित किया जाता है। वस्तुतः बोधगम्यता वह तत्व है जो हमें भाषा के विभिन्न बोलियों को एक समूह में प्रस्तुत करने या उन्हें अलग रखने में सहायता देता है। इसी के आधार पर हम एक भाषा के विभिन्न बोलियों, एक बोली के विभिन्न व्यक्ति बोलियों का निर्धारण और उनके समूह की निर्मित कर पाते हैं। अथवा भौगोलिक समानता होने पर भी विभिन्नता के कारण उन्हें किसी दूसरे समूह में रख पाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति बोली, बोली एवं भाषा को अलग अलग करने वाला या उनके समूह की को निर्मित करने वाला तत्व है बोधगम्यता। किसी एक ही भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु दो भिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते। हम कह सकते हैं कि एक ही बोली के वक्ताओं में 100% बोधगम्यता होती है। जब यही बोधगम्यता दो या दो से अधिक बोलियों में कुछ कम हो जाती है तो उन सभी बोलियों को ऐतिहासिक तथा भौगोलिक संबंधों के कारण एक भाषा की उपबोलियां स्वीकार किया जाता है। जैसे मथुरा तथा अलीगढ़ की बोली एवं अवधि के अंतर्गत लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद आदि जिलों की बोलियां हैं। इन बोलियों के अंतर्गत और अधिक सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली बोलियां भी हैं। बोधगम्यता कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें प्रमुख हैं क, स्थिति अथवा संदर्भ, ख, परंपरा, ग, श्रोताओं की क्षमता, घ, प्रयुक्त ध्वनि रूपों का उच्चारण साम्य एवं अंग, प्रयुक्त शब्दों की आवृत्ति या अधिक्य। पारस्परिक बोधगम्यता को मूल शब्दावली से भी नहीं नापना चाहिए। कभी कभी दो भिन्न बोलियों में मूल शब्दावली समान होते हुए भी ध्वनि, रूप एवं वाक्यगत पर्याप्त अंतर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अलग अलग भाषाएं या बोलियां स्वीकार की जाती है। यदि हम एक व्यक्ति बोली को चुने और उसे अन्य बोलियों के साथ रखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम के साथ या एक दूसरे के साथ कौन सी कितनी परस्पर बोधगम्य है। परिणाम देने वाले समूह को हम एल सिंप्लेक्स की संज्ञा देंगे। इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चित्र में प्रत्येक बिंदु एक व्यक्ति बोली को दर्शाता है। इस प्रकार यह समूह 11 व्यक्ति बोलियों का है। इनमें जो परस्पर बोधगम्य है उन्हें एक रेखा जोड़ती है। चित्र में प्रस्तुत समूह में सम्मिलित एल सिंप्लेक्स 5 समूह निर्मित करते हैं। पहले में 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे में 4, 5, 6, 7, तीसरे में 6, 7, 8, चौथे में 8, 9, 10 एवं पाँचवें में अकेली व्यक्ति बोली सम्मिलित है। चूँकि 6, 1, 2 अथवा 3 के साथ परस्पर बोधगम्य नहीं है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एल सिंप्लेक्स का निर्माण नहीं करते। 1, 2, 3, 4 भी एक निर्मित नहीं करते। क्योंकि ये चारों ही परस्पर बोधगम्य नहीं है, बल्कि पांच के साथ भी ये बोधगम्य नहीं है। यदि दो व्यक्ति बोली परस्पर बोधगम्य नहीं है, तो उस समय हम एक या अधिक दूसरी व्यक्ति बोली खोजते हैं जो प्रथम दो के साथ एक श्रृंखला बनाती है, जिसमें हर एक क्रमिक जोड़े परस्पर बोधगम्य हो। उपर्युक्त चित्र में पांच एवं छः के, छः एवं आठ के, आठ एवं दस के समान एक एवं दस परस्पर बोधगम्य नहीं है, लेकिन एक पाँच छः आठ एवं दस, एक एवं पाँच परस्पर बोधगम्य है अथवा एक श्रृंखला से जुड़ी है, तो ये वे संबद्ध योजक हैं। एक एल कॉम्प्लेक्स की व्यक्ति बोलियों के साथ सम्मिलित वे सभी व्यक्ति बोलियां जो पहले और एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक एल कॉम्प्लेक्स निर्मित करती हैं। कई संदर्भों में यह पता लगता है कि एक प्रतिष्ठित भाषा के नाम का व्यक्ति बोलियों का एक जोड़ा जो परंपरा भाषा कहा जाता है, दोनों एल सिंप्लेक्स एवं एल कॉम्प्लेक्स समूह कहलाता है। मिनोमिनी, याकटाओ या ऐसी अन्य अनेक आदिम युगीन भाषाएं हैं जो कुछ छोटी और स्वायत्त संपन्न जातियों द्वारा बोली जाती हैं थी। जर्मन भाषाओं में भी ऐसी व्यक्ति बोलियों के जोड़े हैं जो परस्पर बोधगम्य नहीं है। भारत में भी ऐसे आदिम बोलियां मिल जाती हैं। इस संबंध में एक और उपयोगी अवधारणा बोलियों के झुकाव की है। यदि एक समूह में नौ व्यक्ति बोली है, तो व्यक्ति बोलियों के जोड़ों की संख्या होगी ज बराबर नौ कोष्ट में नौ ऋण एक बटा में दो। यदि समूचे समूह में परस्पर बोधगम्य बोलियों के जोड़े के रूप में म संख्या हो, तो बोली के झुकाव का घातांक होगा झ बराबर ज माइनस म का स्क्वायर बटा में फाइव। यदि व्यक्ति बोली के अधिकांश जोड़े परस्पर बोधगम्य हैं, तो झुकाव कम होगा। यदि अधिकांश जोड़े परस्पर बोधगम्य नहीं हैं, तो झुकाव अधिक होगा। बोधगम्यता के निरंतर कम होने पर बोलियों में पारस्परिक दूरी का आभास होता है। 50% से अधिक बोधगम्यता होने पर एक भाषा की सीमा में बोलियों को समाहित किया जाता है, जैसे खड़ी, ब्रज, बौद्धी, कनौजी आदि को हिंदी की बोलियां माना जाता है। पारंपरिक बोधगम्यता का सिद्धांत कठोरता से लादा नहीं जा सकता, क्योंकि 50% बोधगम्यता होने पर यह भी संभव हो सकता है कि वे दो बोलियां हो। सीमा रेखा पर स्थित दो भिन्न भाषाओं में भी अनेक कारणों से वैसी ही बोधगम्यता बनी रहती है जैसी उस भाषा की दो बोलियों में। जब बोधगम्यता का प्रतिशत और भी कम रह जाता है, तो दोनों बोलियां भिन्न भाषा सीमा में आ जाती है। ऐतिहासिक या अन्य किसी कारण से उनमें स्वर रूप एवं शब्दगत समानता बनी रहती है। जब यह भी समाप्त हो जाती है, तो उनका संबंध दो अलग परिवारों से माना जाता है। दूसरा, संकेतनाद। बोली की बोधगम्यता का इस बात पर भी निर्भर करती है कि वक्ता भौगोलिक दृष्टि से कहां और कैसे रहता है। उदाहरण के लिए, अवधि क्षेत्र का एक व्यक्ति यदि किसी गांव से जाकर अवधि क्षेत्र के ही किसी शहर में बस जाए, तो उसकी पुरानी एवं नव विकसित बोली की परस्पर बोधगम्यता में बहुत अंतर नहीं आता। किंतु वही व्यक्ति किसी ऐसे बोली क्षेत्र में जाकर बस जाए जो उस बोली से तो भिन्न हो पर एक ही भाषा समूह की हो, तो ऐसी स्थिति में बोधगम्यता का स्वरूप एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यही नहीं, जब एक बोली का वक्ता अपनी भाषा क्षेत्र से दूर किसी अन्य भाषा क्षेत्र की बोली के संपर्क में आता है और उसकी कतिपय शब्दावली को ग्रहण कर लेता है, तो वह एक ऐसी भाषा विकसित कर लेता है जिसे अर्ध द्विभाषिकता कहते हैं। मराठी या बंगला बोली क्षेत्र में रह रहे उत्तर भारतीय इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जो एक तरफ अपनी बोली नहीं छोड़ पाते पर दूसरी तरफ मराठी एवं बंगला के दैनिक जीवन के अनिवार्य शब्दों को अपनी बोली में सम्मिलित कर लेते हैं। कभी कभी तो उनका स्वनात्मक उच्चारण एवं वाक्य संरचना भी प्रभावित हो जाता है। पारस्परिक बोधगम्यता पर आधारित व्यक्ति बोली एवं बोली बोली तथा भाषा का उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण हमें केवल उसके बाह्य स्वरूप का परिचय दे पाता है। वस्तुतः इस पद्धति द्वारा बोलियों के जोड़े के स्वरूप एवं संरचना के निर्मित तथा अंतर के बारे में हम कुछ नहीं जान पाते। इसमें इतनी गहराई से खोज करनी चाहिए कि किस समान तत्वों के कारण बोलियों के जोड़े में पारस्परिक बोधगम्यता है। यदि एक तरफ पारस्परिक बोधगम्यता बोलियों के नैकट्य एवं समानता की परिणति है, तो दूसरी तरफ बोलियों में एक निश्चित अंतर पारस्परिक बोधगम्यता में बाधक भी है। प्रायः यह देखा गया है कि भिन्न संकेतों के माध्यम से भी व्यक्ति एक दूसरे से विचार विनिमय कर लेते हैं। निश्चय ही इन कारणों के आधार की जांच हमें व्यक्ति बोलियों को भाषा समूह में रखने में सहायक होगी। जिन व्यक्तियों की बोली वस्तुतः समान होती है वे एक दूसरे को सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। इस प्रकार की नादात्मक सरणी कभी कभी संप्रेषण को कठिन अथवा असंभव बना देती है। यह तभी होता है जब वक्ता अत्यंत आवश्यक तत्वों को श्रोता को संप्रेषित नहीं करता या श्रोता उन तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता। यद्यपि ऐसा कम ही होता है, संप्रेषण के सुगम बने रहने का कारण भाषाई प्रतीक है। जो वक्ता के संदेश को उसी रूप में ग्रहण कर श्रोता तक पहुंचाता है जिसमें श्रोता संदेश को उसी रूप में ग्रहण कर सके। नादात्मक सरणी कभी कभी कुछ प्रमाणों को नष्ट कर देती किंतु संप्रेषण को इस प्रकार विकृत नहीं करती कि श्रोता को भाषाई प्रतीक स्पष्ट ही न हो। परस्पर विचार विनिमय करने वाले दो व्यक्तियों की भाषा की संकेत के विचलन को एक विशेष किस्म के नाद की संज्ञा दी जा सकती है, संकेत नाद। संकेत नाद के ठीक नहीं होने पर भी व्यक्ति को एक दूसरे को समझ लेते हैं। इसका कारण यह है कि एक सीमा तक सरणी नाद संप्रेषण नष्ट नहीं करता। एक व्यक्ति अपनी भाषा व्यवहार की आदत के रूप में जो ग्रहण कर किए रहता है उसे ही भाषाई प्रतीक का स्वरूप प्रदान करता है। भाषाई प्रतीक के सही रूप में संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि वक्ता क्या संदेश प्रेषित कर रहा है, किस रूप में प्रेषित कर रहा है। वक्ता से अलग आदत के विशिष्ट श्रोता के लिए संप्रेषित अंश में से कुछ तत्व अप्रासंगिक हो सकते हैं और स्थिति यह हो सकती है कि श्रोता उन भाषाई संकेतों को ग्रहण न कर पाए जो वक्ता संप्रेषित करता हो। किंतु दोनों द्वारा बोले गए भाषाई अंश में यदि समान तत्वों की बहुतायत है तो श्रोता उसे उसी अभिव्यक्त रूप में आसानी से ग्रहण कर लेगा। सरणी नाद की दीर्घता के बावजूद भी यदि व्यक्ति बोलियों के एक खास जोड़े में संकेत नाद का अभाव और उनके उच्चारण वस्तुतः समान हो तो भी संप्रेषण संभव है। इन व्यक्ति बोलियों का दूसरे व्यक्ति बोलियों के जोड़े के साथ संप्रेषण तभी संभव है जब वहां सरणी नाद की सीमा छोटी हो तथा संकेत नाद की अधिकता हो। तीसरा, उभयनिष्ठ अंतर्भाग, कॉमन कोर। यदि किसी समुदाय के लोग आपस में निरंतर विचार विनिमय करते हैं तब उनका सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन लोगों की बोलियों में समान तत्व है। प्रायः हम यह भी देखते हैं कि दो भिन्न समुदाय की खास भाग के व्यक्ति जो भौगोलिक दृष्टि से निकट रहते हैं वे भी आपस में विचार विनिमय कर लेते हैं। इसका भी कारण दोनों बोलियों के उन हिस्से में समान तत्वों की प्रधानता है। ये समान तत्व उभयनिष्ठ अंतर्भाग कहलाते हैं। नाद सारणी की स्थिति को छोड़कर कोई भी बोली सभी वक्ता एवं श्रोताओं के लिए तब तक बोधगम्य है जब तक वह उभयनिष्ठ अंतर्भाग की अंतर्गत है या वह दूसरे वक्ता की बोली से विशिष्ट एवं समान न हो तथा संकेतवाद का निर्माण न करती हो। दिए हुए चित्र में बहुत ही स्पष्ट ढंग से दो बोलियों के उभयनिष्ठ अंतर्भाग को दर्शाया गया है। चौथा संबंध है अर्ध द्विभाषिता। बिना उभयनिष्ठ अंतर्भाग के भी सैद्धांतिक दृष्टि से तीन बोलियां परस्पर बोधगम्य हो सकती हैं। इसे हम चित्र 2.3 द्वारा दिखा सकते हैं। अ एवं ब बोली में उभयनिष्ठ अंतर्भाग है, उसी तरह अ एवं स ब एवं स में भी है। किंतु अ ब एवं स को एक साथ रखने पर उनमें उभयनिष्ठ अंतर्भाग नहीं है। ब बोली में प्रस्तुत कथन को ब एवं स दोनों वक्ता समझ सकते हैं परंतु यह स्थिति बार बार नहीं आती। परस्पर बोधगम्यता के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति बोलियों के स्वरूप के विचलन की स्थिति में मिल जाता है। एक वक्ता प्रायः अपनी बोली एवं अपनी बोली के संकेत से पूर्ण परिचित होता है और वह उस बोली को उन स्थितियों में भी समझ लेता है जिसे वह बोलने में अभ्यस्त नहीं है। चित्र 2.4 में भीतरी वृत्त व्यक्ति की उत्पादक व्यक्ति बोली को दर्शाता है जबकि उसके बाहर का वृत्त उसकी उस स्थिति को दर्शाता है जिसे वह बोलता नहीं पर समझता है। बिना अपने आप संकेत नाद विघटित हुए अ का कथन ब ब की उत्पादक व्यक्ति बोलियों से बाहर पड़ता है। यह केवल संकेत नाद है। यदि यह ब बोली के बड़े वृत्त भाग के बाहर पड़ता है यह स्थिति तुरंत हमें अर्ध द्विभाषिता का स्मरण दिलाती है। दो व्यक्ति के लिए अपनी उत्पादक बोली में बिना किसी संकेत सरणी के भी विचार विनिमय संभव है। कल्पना कीजिए, एक फ्रांसीसी जो जर्मन समझता हो तो है पर बोल नहीं सकता और एक जर्मन जो फ्रांसीसी समझ तो सकता है पर बोल नहीं पाता परस्पर विचार विनिमय कर सकते हैं। स्थिति को चित्र संख्या 2.5 में दिखाया गया है। इसमें दोनों बोलियों के वे छोटे वृत्त जो उत्पादक व्यक्ति बोलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक दूसरे को नहीं काटते या भयनिष्ठ नहीं है, जबकि बड़ा वृत्त दोनों बोलियों की संग्राहक स्थिति को एक दूसरे को काट कर दर्शाता है। पांचवा संबंध है समावेशक प्रतिमान। किसी खास बोली की उत्पादक एवं संग्राहक क्षमता की परिधि में बहुत अल्प अवधि में परिवर्तन हो जाता है। एक सैनिक की अपेक्षा एक साधारण व्यक्ति स्वर का प्रयोग कम करता है, पर साधारण व्यक्ति भी उस शब्द एवं अर्थ को उसी प्रकार जानता है और समझता है जैसे एक सैनिक। यदि साधारण व्यक्ति सैनिक बन जाए एवं सैनिक साधारण व्यक्ति, तो दोनों की उत्पादकता हल्की सी बदल जाएगी। भाषा का सीखना कभी समाप्त नहीं होता। भाषा के अंतर्गत जो तत्व तो आज किसी व्यक्ति की संग्राहक क्षमता के बाहर है कल वही उसकी परिधि में हो सकते हैं। उभयनिष्ठ अंतर्भाग से युक्त समावेशक प्रतिमान परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक दूसरे से संबंध व्यक्ति बोलियों के हर समूह में विद्यमान रहते हैं। समावेशक प्रतिमान में वे सभी चीजें सम्मिलित हैं जो किसी भी व्यक्ति बोली की उत्पादकता एवं संग्राहकता के भंडार में विद्यमान है। उपर्युक्त कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने चित्र 2.6 में तीन व्यक्ति बोलियों, तीनों के उभयनिष्ठ अंतर्भाग एवं तीनों के समावेशक प्रतिमान को दिखाया है। प्रायः यह देखा जाता है कि शिक्षित समुदाय के व्यक्ति किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और उसे प्रचलित एवं सर्वग्राह्य बना देते हैं जो उनकी बोली में तो नहीं रित रहता है किंतु उस बोली या किसी दूसरी बोली के प्राचीन लिखित सामग्री में रहता है। भाषा की यह स्थिति ही समावेशिक प्रतिमान कहलाती है। वस्तुतः समावेशक प्रतिमान बोलियों अथवा व्यक्ति बोलियों के अंतर को प्रदर्शित करने के लिए आधार प्रदान करता है। एक भाषा का समावेशक प्रतिमान आयुधशाला की किस्म है जिसमें आवश्यक हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बोली इसे अपने अनुरूप चुनाव का प्रतिनिधित्व करती है, कभी सम एवं कभी विषम। उभयनिष्ठ अंतर्भाग एवं समावेशक प्रतिमान पारस्परिक बोधगम्यता के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं देते हैं। वे विभिन्न भाषाओं के बीच सीमांकन के आधार भी प्रदान नहीं करते। इसके विपरीत वे व्यक्ति बोलियों को भाषा समूह में निर्धारित करने में सहायता देते हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण आधार वे भाषा का विवरणात्मक स्वरूप प्रस्तुत कर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम, हम किसी व्यक्ति बोली को बिलगांव के आधार स्थल पर ग्रहण कर सकते हैं और उसे उन सभी व्यक्ति बोलियों के साथ रख सकते हैं जिनमें इंद्रिया गोचर उभयनिष्ठ अंतर्भाग विद्यमान हो। हम कल्पना कर लें कि सामान्यतः जो व्यक्ति बोलियां हिंदी कही जाती हैं वे सभी एक समूह से संबद्ध है। यह संभव है पर निश्चित नहीं। इस परीक्षण से पंजाबी एवं बिहारी अलग हो जाएंगी और एक योजक बोली समुदाय के रूप में नहीं रह जाएगी। इस तरह के समुदाय की निर्मित के पश्चात हम उसके अध्ययन एवं विश्लेषण में विभिन्न आधार स्वीकार कर सकते हैं। एक तरीका यह होगा कि हम किसी एक व्यक्ति बोली के संदर्भ में अध्ययन करें, किसी व्यक्ति बोली के संपूर्ण समूह का उनके वृत्ताकार पूर्ण रूप से आवृत क्षेत्र एवं व्यक्ति बोली का क्रमशः उत्पादक एवं संग्राहक क्षेत्र आवृत करता है। बिंदुओं से युक्त वृत्त दूसरी व्यक्ति बोलियों का एवं डैश से बना वृत्त तीसरी का, रेखांकित अंश तीनों का उभयनिष्ठ अंतर्भाग है एवं बाहरी रेखांकन समावेशक प्रतिमान को प्रस्तुत करता है। उभयनिष्ठ अंतर्भाग के आधार पर अध्ययन दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है व्यक्ति बोलियों के समुदाय के समावेशक प्रतिमान को खोजकर सभी बोलियों पर एक साथ परीक्षण करना। तीसरा बोली एवं व्यक्ति बोली या बोली एवं भाषा के आधारभूत अंतर को स्पष्ट कर देता है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। बोली तथा भाषा के अंतर पारस्परिक संबंध एवं वर्ग निर्धारण के लिए भी उपयुक्त आधार को उसी रूप में सहारा लिया जाता है। इसलिए बोली एवं भाषा के संदर्भ में पुनः उन आधारों का प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्ति मात्र होगी। छठवां शब्द समूह। शब्द समूह बोली की स्वतंत्र सत्ता का परिचायक होता है। भले ही भाषाई रूप में दूसरी बोली से उसकी किसी मात्रा में समानता ही दिखाई देती हो, जिस भाषा में उसके स्थानीय रूप जितने अधिक होते हैं वो भाषा उतने ही अधिक निजी महत्व रखती है। अमेरिकन इंडियन भाषाओं के संदर्भ में एम स्वेडस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस बात का प्रमाण है। उनके अनुसार जिन भाषाओं बोलियों की 81% या उससे अधिक शब्दावली समान हो तो विवच्य बोलियां एक ही भाषा की बोलियां कहलाएंगी, जबकि 81% से कम समान शब्दावली वाली बोलियां पृथक भाषाएं होंगी। केंद्रीय शब्दावली की समानता के कारण थोड़े बहुत ध्वनिगत अंतर पर भी बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता बनी रहती है। सातवां, अधिक विभिन्नताओं से रहित व्याकरण ऋक् रूपों की समानता। सातवां, अधिक विभिन्नताओं से रहित व्याकरणिक रूपों की समानता। किसी बोली में व्युत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न रूप ग्रामों के प्रतिशत बढ़ जाने पर वह बोली भाषा का स्थान ले लेती है। समान या मिलते जुलते रूप ग्रामों की संख्या अधिक होते हुए भी ध्वन्यात्मक भेद होने पर वह भिन्न भाषा हो सकती है। निजी विशेषता के कारण कोई भी भाषा बोली भाषा का स्थान ले सकती है। कतिपय भाषाएं बोली तथा भाषा की सीमा रेखा पर रहती हैं। उमुक संरचनात्मक दृष्टि से मलय बोली ही है, जबकि शब्दावली के आधार पर स्वतंत्र भाषा के रूप में समझी जानी चाहिए। इस संबंध में दूसरा उदाहरण सिसुल बोली का लिया जा सकता है, जो संरचनात्मकता तथा शब्दावली दोनों दृष्टियों से पर्याप्त भिन्न है। साथ ही अत्यधिक आगत शब्दावली के कारण नियास तथा सिमालूर से मिलकर तीसरी भाषा के रूप में विकसित हुई। राजनीतिक एवं साहित्यिक कारणों से कभी बोली भाषा बन जाती है, कभी अप्रमुख होकर भाषा बोली। भारतवर्ष में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण मिल जाते हैं। ब्रजभाषा एवं अवधि के संदर्भ में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कभी ये भाषा थी, आज बोली रह गई है। इसके पहले इस बात पर पर्याप्त विवाद था कि डोंगरी भाषा है या बोली। सीमांत की भाषा होने के कारण डोंगरी को सरहदी बोली या भाषा माना जा सकता है, पर डोंगरी के रूपों में निश्चयात्मकता का अभाव है। इसके कारण डोंगरी को बोली ही कहना संगत होगा। जैसे हिंदी था के लिए डोंगरी में तीन समान रूप प्रचलित हैं, था सा हा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा के व्याकरणिक गठन की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखा है कि गोरखपुर की किसान की भाषा अत्यधिक संलिष्ट है तथा उसकी क्रियापदों के रूप में लैटिन से भी अधिक जटिलता है। इसके विपरीत झांसी के जंगल का व्यक्ति एक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिसका व्याकरण बिल्कुल संश्लिष्ट नहीं है। उसके क्रियापदों में केवल एक काल तथा दो कृदंतों का व्यवहार होता है और उसमें अन्य कालों का निर्माण कृदंतों तथा सहायक क्रियाओं के प्रयोग सहयोग से संपन्न होता है। दोनों स्थानों के किसानों की भाषा के शब्द समूह भी समान हो सकते हैं, किंतु एक भाषा का व्याकरणिक गठन दूसरे से सर्वथा भिन्न है। अवधि ग खड़ी बोली गया, ब्रज में गयो तथा पूर्वीपन लिए हुए गयो रूप परस्पर समान तथा बोधगम्य होने के कारण अवधि खड़ी ब्रज तथा कनौजी का हिंदी भाषा की बोलियां माना जाता है। आठवां, बोली ही भाषा बन जाती है। समुदाय विशेष में परिस्थितिवश अनेक बोलियों में से एक बोली प्रमुख होकर भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। इसकी पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कारणों की संभावना व्यक्त की गई है। पहला, भौगोलिक स्थिति। दूसरा, राजनीतिक प्रमुखता। तीसरा, साहित्यिक श्रेष्ठता। चौथा, जनसंख्या की अधिकता। पांचवा, शिक्षा स्वभाव एवं धार्मिक आस्था। छठवा, सामाजिक मान्यता। राजनीतिक साहित्यिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में प्रयोग बहुल्य तथा बोलने वालों की संख्या की अधिकता के कारण जब कोई बोली किसी समुदाय या राष्ट्र के लिए मानक स्वीकार कर ली जाती है तो वह भाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। कालांतर में वह राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाती है। आधुनिक हिंदी की खड़ी बोली इसका उदाहरण है, जो आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत है। इसके इस स्वरूप प्राप्ति में राजनीति, साहित्य, धर्म, जनसंख्या आदि सभी तत्वों ने सहयोग दिया, पर यह खड़ी बोली का केवल उतना परंतु यह खड़ी बोली का केवल अपना रूप नहीं है, अपितु किसी हिंदी भाषा मंडल किस भी बोलियों का सम्मिलित रूप है, जिसमें हर बोली की विशेषताएं समाहित है। यही तो बोधगम्यता का मूल स्रोत है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आज विकसित युग में या विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए हर बोली समूह की यह अनिवार्यता होती है कि वह परस्पर विनिमय हेतु एक ऐसे मानक स्वरूप को निर्मित करे जो भाषा कहला सके। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है।